हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 31 और 32। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् अरविंद कृष्णात्परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देव ये स्तवि वेदे सांगपत कमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो धीरमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं केशवं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, श्लोक संख्या 31। अत्यंत सुंदर भाव है, जैसे कि हमने कल पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासियों से मिलने के बाद अपने माता पिता से मिले, माताओं का आलिंगन और प्रेम को स्वीकार किया। उसके उपरांत सुत गोस्वामी ने बताया अथा विशत स्वभवनम। उसके बाद भगवान ने प्रवेश किया कहाँ पर? अपने भवन में, कौन से भवन थे भगवान के, सर्व काम मनोत्तमम, समस्त प्रकार की भोगों की सामग्री जहाँ पर प्रचुर मात्रा अनुत्तमम है, जो सबसे उत्तम, इनसे बढ़कर संसार में और कोई भवन हो नहीं सकता। इस संसार की किसी भी वस्तु से जड़े हुए नहीं, बल्कि दिव्य जगत की सामग्री इस संसार की किसी भी फैक्ट्री से बनाकर वहां पर ये फर्नीचर इत्यादि नहीं रखा, बल्कि दिव्य जगत की एक एक वस्तु चिंतामणि पत्थरों से बनी हुई थी। ऐसे दिव्य भगवान के भवन और एक एक भगवान की सहस्राणी च षोडश, भगवान की 16108 पत्नियां थी प्रसादायत्र, और हर एक पत्नी के पास इतने सुंदर सुंदर एक महल था। तो वहां पर भगवान, अब क्योंकि पहले से ही विभु बता दिया गया, तो भगवान जो है वो 16108 पत्नियों के साथ 16108 रूपों में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से पत्नियां भगवान से मिलती हैं, और इतने समय के बाद वो पति जो भगवान के, भगवान आज जो उन पत्नियों को दर्शन देने के लिए आए हैं, तो किस प्रकार से अपनी उत्कंठा को भगवान के सामने व्यक्त करती हैं। मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्लोक नंबर 31, सूत गोस्वामी कहते हैं, पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजातमनो महोत्सवा उत्तस्तुरारात् सहसा सनाशयात् साकं वृतेर्वी दितलोचनानना। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजातमनो महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं वृतेर्वी दितलोचनानना। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजातमनो महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं वृतेर्व्रीडितलोचनानना। मतलब जैसे ही भगवान वहां पर आए, विलोक्य, विलोक्य का मतलब है जैसे ही भगवान को देखा तो क्या किया, पत्न्यः पतिम, पत्नियां मतलब पत्नियों ने, भगवान की श्री कृष्ण जो पत्नियां हैं उन्होंने पतिम यानी पति को प्रोष्य, घर से दूर गया हुआ, यानी प्रोष्य का मतलब होता है वो पति जो परदेश गया होता है उसको बोलते हैं प्रोष्य। गृहानुपागतम यानी अब जब उन्होंने देखा कि बहुत समय से जो हमारे पति परदेश गए हुए थे वो आज पुनः घर लौटे हैं, तो विलोक्य उनको देखते ही संजातमनो महोत्सवा, उनको देखते ही उनका, उनके हृदय में संजात मतलब उत्पन्न होने लगा मनो महोत्सव, मन के भीतर प्रसन्नता पूर्ण एक उत्सव का भाव, मन में महान सुख, महान आह्लाद, महान आनंद प्रकट हो गया, जिसे उन्होंने देखा कि कृष्ण पुनः लौट आए हैं। इतने समय के बाद भगवान को देखते ही उनके हृदय में आनंद छा गया और उत्सुरारात मतलब उत्तस्थुरारात, उत्तस्थुरारात का मतलब है, उत्तस का मतलब है फौरन से उठी, और दूर से ही सहसा एक साथ जैसे ही भगवान को देखा तो उठी, कहां से, आसना, आसना का मतलब होता है आसन से,
और आशयात का मतलब होता है ध्यान अवस्था से, मतलब अंतःकरण को छोड़कर। जैसे आसन से तो शरीर उठा, लेकिन आत्मा जो है वो भी अंतःकरण को छोड़कर भगवान को आलिंगन करने के लिए जाना चाह रही थी उनसे। अब वो उत्सुकता बर्दाश्त नहीं हो रही, दूर से ही देखते ही आसन से खड़ी हो गई और अंतःकरण से भी खड़ी हो गई, यानी आत्मा से भी वो भगवान, ना केवल उनका शरीर बल्कि उनकी आत्मा भी भगवान को निहार कर भगवान को आलिंगन करना चाह रही थी। तो फिर वो ना केवल स्वयं उनका देह उठा बल्कि उनकी आत्मा भी उतनी ही तत्परता के साथ आत्मा अंतःकरण को छोड़कर भगवान से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। और आगे कहते हैं साकम व्रतेर्वि, साकम का मतलब है उसके साथ साथ, व्रते यानी व्रत के, व्रत किसको बोलते हैं यानी आसन को भी छोड़ा और उसके साथ साथ व्रतों को भी छोड़ दिया। व्रतों को कैसे, जैसे व्रत का मतलब होता है नियम, तो शास्त्र कहता है याज्ञवल्क मुनि बताते हैं कि जब पति परदेश गया होता है, प्रोष्य का मतलब होता है परदेश गया हुआ पति, जब किसी पत्नी का पति परदेश जाता है तो बहुत सारे व्रत लेने होते हैं उसको। व्रत का मतलब होता है कुछ नियमों का पालन करना होता है, कई काम ऐसे होते हैं जो उसे नहीं करने होते हैं। तो जब क्योंकि भगवान की पत्नियां तो पतिव्रता थी, तो वो उन सारे कार्यों का व्रत जो कि शास्त्र कहता, शास्त्र मना करता है बहुत सारी चीजों से कि जो पति अगर परदेश जाए तो पत्नी को नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं याज्ञवल्क मुनि बताते हैं क्रीराम शरीर संस्कारम समाज उत्सव दर्शनम हास्यम प्रग्रह जानम त्यजत परिष्यति भर्तिकात, यानी कि जो परिष्यति भर्तिका, परिष्यति मतलब प्रशियत, प्रोष्य जो होता है वो जो पति परदेश जाता है, और प्रशित मतलब जिसका पति परदेश गया होता है उसकी पत्नी को, भर्तृका मतलब उसकी पत्नी को ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। क्या, क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलकूद नहीं, खेलकूद का मतलब है स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मतलब ऐसा खेलकूद किसी और लोग के साथ नहीं करनी चाहिए, गार्डन्स में जाए खेले कूदे ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर संस्कारम, क्रीराम शरीर संस्कारम, शरीर संस्कारम मतलब शरीर को ज्यादा बहुत ही ज्यादा फैंसी बनाकर ऐसे ऐसे ड्रेसेस और आभूषण पहनकर नहीं जाना चाहिए कि अन्य लोगों की दृष्टि उसकी हो रहा है। पति साथ है तो पत्नी का क्या है, शास्त्र कहता है पत्नी केवल पति के लिए ही श्रृंगार करती है, ना कि समाज के लिए, ना समाज को दिखाने के लिए पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज को दिखाने के लिए तो वेश्या श्रृंगार करती है। पतिव्रता जो पत्नी होती है वो केवल अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, तो उसको क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, उसको शरीर संस्कार मतलब ज्यादा सजदज कर नहीं जाना चाहिए। और समाज उत्सव, समाज उत्सव मतलब जो सोशल फेस्टिवल्स होते हैं उनको भी सेलिब्रेशन में उनमें भी नहीं जाना चाहिए अकेले पत्नी को। और दूसरा दर्शनम, दर्शनम मतलब दूसरी वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए, कोई बड़े बड़े फ्री गेम्स हो रहे हैं, यहां तक कि शास्त्र तो कहता है कि पति के बगैर तो टीवी और फिल्में भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का कार्य है पति के साथ मनोरंजन करना, यदि पति परदेश गया है तो उसको इस तरह के मनोरंजन नहीं करने चाहिए। और आगे हास्यम यानी दूसरे लोगों के साथ भी है ना हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। प्रगृह जानम यानी दूसरों के घरों में चले जाए, पति नहीं है तो कभी किसी के घर में चले जाए किसी के, ये सब भी नहीं करना चाहिए। त्यजत उसको ये सब त्यागने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि पत्नी को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और शरीर को ज्यादा सजाना धजाना नहीं चाहिए और समाज उत्सव में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है अगर पति जाए ना किधर तो पत्नी को
भागवत कथा अटेंड करनी चाहिए, जहां पर भागवत भक्ति हो रही है, जहां पर कीर्तन हो रहा है, जहां पर सत्संग हो रहा है, तहां पर जाना चाहिए। और पति जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण युद्ध में गए थे, तो फिर वहां पर जाकर पति की लंबी आयु की, उनकी विजय के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन ऐसी दूसरी, क्योंकि वास्तव में यहां पर बताया जा रहा है पति के ना होने, पति की अदम गैर मौजूदगी में पत्नी को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए समय, क्योंकि अभी पति भी नहीं है तो वरना फिर उनको ज्यादा समय देना पड़ता है ना। तो अभी जो वास्तव में दीनबंधु जगतपति भगवान श्री कृष्ण जो है उनको समय देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसी से उनका और उनके पति का और उनके सारे परिवार का कल्याण होगा। तो यहाँ पर तो ये साक्षात भगवान की पत्नियां हैं, उन्होंने क्या किया, साकम व्रतिर्वीड तलोल लोचना नना। तो यहाँ पर वीरत यानी अब उन्होंने जैसे ही भगवान को देखा तो फौरन से खड़ी हो गई, आसन से खड़ी हो गई, उनकी आत्मा अंतःकरण से खड़ी हो गई। लेकिन वो लोचना मतलब व्रीडित लोचना मतलब लज्जा से, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि जो है वो भगवान की ओर ना खड़ी हो सकी, उनकी मुखमंडल नीचे हो गए, वो मुख को ढक कर मतलब और अपनी दृष्टि नीचे कर ली। हृदय तो भगवान की ओर चला गया था, आत्मा तो भगवान को आलिंगन कर रही थी, मन में तो भगवान के साथ मिलन का आनंद हो रहा था, दृष्टि परंतु लज्जा के कारण भगवान की ओर उठ ना सकी, इसलिए व्रीडित लोचनानना वो मुख को नीचे लज्जित नेत्रों को नीचे करके भगवान के सामने आ रही हैं। अनुवाद, दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर में आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुईं। वे अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और नीची दृष्टि के देखने लगे। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भगवान अपनी 16108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए, इसका अर्थ है कि भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थे और उन सबों में एक साथ पृथक पृथक घुसे। यहाँ पर उनकी अंतरंगा शक्ति की अन्य अभिव्यक्ति हुई है। वेच्छानुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में विस्तार कर सकते हैं, यद्यपि वे अद्वितीय हैं। श्रुति मंत्र से प्रतिपादित होता है कि ब्रह्म एक है, किंतु इच्छानुसार वह अनेक बन जाता है। परमेश्वर के ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नांशों के स्वरूप में होते हैं। भिन्नांश उनकी शक्ति के द्योतक हैं और पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान भले ही अद्वितीय हैं, उनके जैसा और कोई नहीं, लेकिन भगवान के अंदर यह शक्ति है कि वो अपने आप को किसी भी प्रकार से विस्तार कर सकता है। तो भिन्नांश या पूर्णांश किसी में भी, भिन्नांश मतलब जो भगवान की शक्ति के अनुसार दूसरे दो जैसे भिन्नांश होते हैं, अब पूर्णांश क्या होते हैं, भगवान के जितना ही, अब जितने भी कृष्णा अभी 16108 महलों में गए थे वो सब पूरे के पूरे पूर्णांश हैं। और भिन्नांश दूसरे होते हैं जैसे देवी देवता और दूसरे भगवान के अंश होते हैं उनको बोला जाता है। तो ये सब अभिव्यक्तियां होती है, पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं और भिन्नांश उनकी शक्ति द्योतक और पूर्ण अंश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हैं। समझ में आया? इस तरह भगवान ने अपने 16108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक ही साथ प्रविष्ट हुए। यह वैभव या भगवान की दिव्य शक्ति है, चूंकि वे ऐसा कर सकते हैं अतएव वे योगेश्वर भी कहलाते हैं। सामान्यतः योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान इच्छा अनुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। अविश्वासी लोग यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि वे उन्हें अपने ही समान मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि वे भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं है, जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार मात्र हैं। अब जैसे भगवान की अलग अलग शक्तियां होती है ना, हम भी भगवान के भिन्न अंश हैं, लेकिन जो भगवान के पूर्ण अंश हैं उनके अंदर भगवान के जितना ही भगवान अपने अंदर से कोई भी अंश निकाल सकते हैं, लेकिन हम भगवान की तटस्थ शक्ति होकर भी ये सोचते हैं भगवान ने ऐसा कैसे किया, 16,108 रानियों से शादी कैसे की। तो वो भगवान है, उनके अंदर इतनी शक्ति है। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार मात्र हैं। मनुष्यों को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्ति तथा शक्तिमान समान है, है ना। हम शक्ति हैं और भगवान शक्तिमान है, और हम समानता कैसे देख सकते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में केवल गुण का रंचमान अंतर है, रानियां भी उनकी अंतरंग शक्ति की विस्तार थी, और इस तरह शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं, है ना। शक्तिमान जो है वो अपनी शक्ति से निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान कर सकता है, ये उसका अधिकार है। तो उन्हें ही भगवान की लीलाएं कहते हैं, और ये जो दिव्य शक्तिमान भगवान है अपनी शक्तियों के साथ जो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसे भगवान की लीलाएं कहा जाता है। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान की इतनी पत्नियां थीं। उल्टे लोगों को यह मानना चाहिए कि यदि भगवान के लाखों करोड़ों पत्नियां होती तो भी वे अपने असीम तथा अक्षय शक्ति को पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकते थे। उन्होंने केवल 16,000 पत्नियों से ब्याह किया, और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने के लिए प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों न हो, वह ना तो उनकी समता कर सकता है और ना ही उनसे बढ़कर है। अतएव ना तो कोई उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। भगवान सभी मामलों में सदा महान है, शाश्वत सत्य भी यही है, ईश्वर महान है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, तत् समा त अधिको कुतोन्य। जब भगवान के समान कोई नहीं है तो भगवान से बढ़कर भला कोई कैसे हो सकता है। तो शाश्वत सत्य क्या है कि भगवान महान है। भगवान क्या कर रहे हैं सिर्फ जानना है, क्यों कर रहे हैं इसके पीछे हमें नहीं भागना, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी अचिंत्य शक्ति है। तो हम भगवान की छोटी सी शक्ति जो है वो भगवान के इन कार्यकलापों को कैसे समझ सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान ने तो सिर्फ 16,108 पटरानियों से शादी की थी, अगर भगवान करोड़ों लड़कियों से भी शादी करते ना तो भी भगवान अपनी पूरी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकते थे। तो फिर भगवान ने क्या किया, केवल भगवान की लीलाओं को जानना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म क्षमे दिव्य, मेरे चाहे जन्म हो चाहे कर्म हो वो सब दिव्य हैं। तो इन दिव्यों को, दिव्य कर्मों को, भगवान के दिव्य जन्म को हम अपनी भौतिक दृष्टि और कुंठित इंद्रियों से नहीं समझ सकते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव जो ही रानियों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक प्रवास करने वाले अपने पति को कुछ दूरी पर देखा तो वे ध्यान की निद्रा से जग गईं और अपने प्रियतम की अगवानी के लिए तैयार हो गईं। अब भगवान को रिसीव करने के लिए जा रही हैं और तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत करना चाहिए, ना हंसना चाहिए और न किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधियों के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हों उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित न हो। वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। अभी देखो इतने समय से तो भगवान नहीं थे तो वो इतना आभूषण भी धारण नहीं कर रहे थे और इतना श्रृंगार भी नहीं कर रही थी, लेकिन क्योंकि साथ में ये भी कहा है कि पत्नी को पति के सामने सदैव सज धज कर जाना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, हर्षित मुद्रा में प्रसन्न, पति जब आए तो मुंह लटका के उसके सामने नहीं जाना चाहिए, हैप्पी फेस बनाना चाहिए, अच्छा सुंदर सज धज कर जाना चाहिए। तो फिर अब जैसे ही क्योंकि भगवान की पत्नियां तो पतिव्रता हैं पूर्ण रूपेण, तो फिर भगवान तो यहाँ पर बताया था ना सुत गोस्वामी ने कि उन्होंने फौरन से वो उठी और उत्तल स्थुराराज सहसा सनाशयात साकम व्रत है, यानी अपने आसन से भी उठी, आसन को त्यागा और देह को त्याग कर मतलब उत्सुकता के साथ आगे बढ़ी और अपने सारे व्रतों को त्यागा। व्रतों को त्यागा मतलब अब क्योंकि पहले सज धज नहीं रही थी, अब पति जब है ना प्रियतम सामने हैं तो उनके सामने सज धज कर अच्छी अवस्था में आभूषण इत्यादि पहनकर वह अपने आप को आभूषणों से अलंकित करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न हर्षित मुद्रा में जाए। कृष्ण की सारी पत्नियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न थी और निरंतर उन्हीं के ध्यान में लीन रहती थी। भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए जो द्वारिका में भगवान की लीलाओं में लक्ष्मी रूप से अवस्थित रहती हैं, लक्ष्मी रूप में अवतरित हुई थी। वे भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलप्त नहीं की जा सकती थी। वृंदावन की गोपियां जब भगवान वन में गाय चराने के लिए बाहर जाते थे तो भगवान को भुला नहीं पाती थी। जब बालक भगवान कृष्ण गांव में नहीं होते थे तो घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए कृष्ण के बारे में ही चिंतन करती थी। कभी कभी इस तरह चिंतन करते करते वे समाधि में पहुंच जाती थी और हृदय में संताप करती थी। भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वे सदैव समाधि में रहते हैं, अतव कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थीं। इस समय भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए जिनमें उपर्युक्त स्त्रियों के व्रत भी सम्मिलित थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले तो सभी अपने अपने आसनों से उठी क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्री लज्जा के कारण वे रुक गईं, लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गईं और इस विचार ने उन्हें अपने आसपास के परिवेश से सचेत बना दिया। इस उत्कंठा की मूल दशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया और इस तरह भगवान के मिलन पथ के सारे अवरोध दूर हो गए। आत्मा के प्रभु श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अत्यंत ही सुंदर रीति से इस सीन को हमें बताया कि पहले तो जैसे ही भगवान को देखा तो फौरन से अपने अपने आसनों से खड़ी हो गई, लेकिन स्त्री लज्जा के कारण वो रुक गई। लेकिन उनकी लज्जा
उनकी उत्कंठा से, जो उनकी उत्कंठा है ना, उनकी लज्जा से जीत गई और उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो। फिर अभी उन्होंने सोचा कि आज इतने समय के बाद कृष्ण आया है तो फिर अभी भी लज्जा के कारण उनसे मिलने नहीं जाएंगी, तो फिर वो उनकी उत्कंठा ने जीत लिया उनकी लज्जा से और भगवान का आलिंगन करने के लिए वो अभिभूत हो गई और इस विचार ने उन्हें अपने आसपास के परिवेश से अचेत बना दिया, क्योंकि अब तो ध्यान में था ना, वो सब ध्यान में कर रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा कि हम भगवान का आलिंगन कर रहे हैं तो वो अचेत हो गई और इस उत्कंठा की मूल दशा के कारण सारी औपचारिकताओं, सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया और इस तरह भगवान के मिलन के सारे अवरोध दूर हो गए। अब देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा के प्रभु श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। किस तरह से वो भगवान का आलिंगन करते हैं उसके विषय में अत्यंत ही सुंदर भाव है। वास्तव में भक्तों, ये सूत गोस्वामी इतने सुंदर रीति से भगवान के मिलन का दृश्य दिखा रहे हैं कि हम जैसे साधारण मनुष्य की बुद्धि उसको पकड़ नहीं पाती, क्योंकि बता रहे हैं कि इतना गंभीर भाव है उन पत्नियों का, वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। उन्होंने किस प्रकार से भगवान को आलिंगन किया, परिरे भिरे पति, परिरे भिरे का मतलब है किस प्रकार से आलिंगन किया, उसको बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 32 कृपया मेरे साथ पढ़िए। तमात्मजय दृष्टि भिरंतरात्मना दुरंत भावा परिरे भिरे पतिम निरुद्धमप्याश्रवदम्भुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् तमात्मजयदृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्याश्रवदम्भुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् तो जैसे सेकंड लाइन में बताया, दुरंत्य भावा, ये अत्यंत ही दुरंत्य भाव है, उनका दुर्लंघ्य उत्कंठा है, बहुत ही गंभीर भाव के साथ वो भगवान से मिल रही हैं। तो हम भला भगवान की पत्नियों का ये भाव कैसे समझते हैं, परिरे भिरे पतिम, कि वो किस प्रकार से अपने पर्दे से आए हुए पति का आलिंगन कर रही हैं। वे कहते हैं, तमात्मजय दृष्टि भिर अंतरात्मना, सबसे पहले तो उन्होंने जैसे ही सुना कि अप्रियतम आ गए हैं तो अंतरात्मना, इधर से शुरू करेंगे, अंतरात्मना का मतलब होता है मन ही मन से आलिंगन कर लिया, पहले मन ही में आलिंगन। वास्तव में ये उनकी पत्नियां हैं, उनका सहज अधिकार है भगवान को आलिंगन करने का, तो मन ही मन से भगवान को आलिंगन कर लिया अंतर आत्मना। और उसके बाद वे कह रहे हैं कि जब थोड़े भगवान करीब आए तो दृष्टि भी, फिर दृष्टि से उनको निहार कर, उनको देख कर उनका दृष्टि से आलिंगन किया, और उसके उपरांत जब भगवान और भी ज्यादा निकट आए तो फिर उन्होंने क्या कहा, तम आत्मजय, तम मतलब उनको भगवान को, आत्मजय अर्थात पुत्रों के द्वारा, यानी कि अब भगवान आए हैं कम उनके महल में तो अपने पुत्रों को गोद में देकर भगवान के
जैसे जैसे ऐसा बताया जाता है कि जैसे अगर पति कहीं से आता है तो यदि पत्नी अपने पुत्र को उनकी गोद में दे और वो पति अपने पुत्र को आलिंगन करे, उनको प्यार करे, तो समझो ये उनकी पत्नी का ही सत्कार है। वास्तव में पति, ये जो संतान होती है वो पति का ही अंश होती है और संतान ही पति पत्नी को जोड़ कर रखती है। ये संतान जो है वो एक ऐसा सीमित है जो पति पत्नी के प्रेम को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर भगवान क्योंकि गृहस्थ का आचरण कर रहे हैं तो भगवान सिखा रहे हैं, भगवान की पत्नियों के द्वारा और भगवान के द्वारा हम सीखते हैं कि किस प्रकार से लोक में पति पत्नी को व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में ये इस तरह नहीं, आजकल जिस तरह से पत्नी पत्नियां जो बहुत ज्यादा अपने प्रेम की नुमाइश करते हैं, ये पब्लिसिटी करते हैं, ऐसा ये हमारे शास्त्र ऐसा नहीं सिखाते हैं। अब देखा हम लोगों ने कि माताओं ने भगवान का आलिंगन किया, दूसरे भी कितने सारे मित्र इत्यादि आए थे वो भगवान का आलिंगन कर रहे हैं, परंतु जिनका सबसे ज्यादा अधिकार है, जो भगवान की पत्नियां हैं, वो आलिंगन नहीं कर रही हैं, कोई ऐसे दिखा नहीं रही है भाई हमारा पति है। तो यही है स्त्री का भूषण कि वो कभी भगवान, यहाँ हमारी वैदिक संस्कृति तो यहाँ तक बताती है कि पत्नी को कभी भी पति का नाम भी नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि बच्चे के नाम से बताते हैं कि बच्चे का नाम लेकर बोलते हैं इनके पप्पा। और जैसे हम जानते हैं कि सीता मैया जब भी श्री राम जब ये जब गए थे वहां पर 14 साल के वनवास में, तो कभी एक दफा क्या हुआ कि वो एक ऐसी जगह पर रुके थे जहां पर सब अनजान थे, कोई भी जैसे नगर आता था तो भगवान को स्वागत करने के लिए लोग आते थे तो रुके थे, तो अभी स्त्रियों के पास स्त्रियां बैठी हुई थी सीता मैया के साथ और कृष्ण श्री राम और लक्ष्मण जो है वो पुरुषों के साथ बैठे हुए थे। तो जो स्त्रियां थी सीता मैया को देखकर इतना चकित हो रही थी, वो इतनी सुकुमारी थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील थी, तो स्वभाव से स्त्रियों की बात ऐसे होती है, पूछती रहती हैं कि क्या आप कहाँ से आए हो कैसे, तो ऐसे बता रही थी, ऐसे पूछ रही थी कि आप इतनी सुंदर हो, राजकुमारी लग रही हो, आप कहाँ से आ रही हो, और ये जो श्याम रंग के है ना जो इतनी सुंदर है वो आपके क्या लगते हैं। मतलब ऐसा इससे ये पता चलता है कि ऐसे नहीं वो चिपक के चल रहे थे कि भाई पता चल जाए दूर से ही कि ये मेरी पत्नी है, नहीं, एक संस्कार, मतलब संसार में उनको किस तरह से रहना था तो पता नहीं चला उनको कि क्या लगते हैं। तो सीता मैया ने सबसे पहले परिचय दिया और कहा कि ये जो गोरे रंग के है ना जो बहुत ही सुशील है और वो मेरे छोटे देवर है, मतलब पहले हालांकि पति से पति का पूछा था, श्री राम के विषय में पूछा, लेकिन वो अपने पति के विषय में नहीं बता रही थी, वो कह रही थी कि जो ये मेरे छोटे देवर है, अर्थात वो साथ में पति के साथ अपने रिलेशन को बता रही है, ये नहीं बोल रही कि मैं उनकी भाभी हूँ, वो बोले मेरे छोटे यानी मेरे पति के छोटे भाई हैं अब, और जो दूसरे हैं उनके विषय में वो कुछ भी नहीं बताया, श्री राम के विषय में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अपने आंचल को सर पे और भी ढाम के इशारा, पहले इशारा किया वो नेत्रों से कि वो जो नेक्स्ट वाले हैं जो श्याम रंग के हैं सुंदर से, कुछ भी बोला नहीं, इशारे से ही बोला और फिर दुपट्टे को सीधा करके बोला, मतलब ऐसा बताया कि ये मेरे बता रहे हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो इतना ज्यादा है ना पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं होती है अपने रिलेशन को। लज्जा जो है वो स्त्री का भूषण है, इसलिए आगे कहते हैं सूत गोस्वामी, निरुद्धमप्याश्रम, निरुद्ध यानी कि उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, अवरोध किया, अपी रोकने की कोशिश की, फिर भी आश्रवत उनके आंसू जो है वो अम्बु जल की बूंदों के समान, आंसू जो है वो जल की बूंदे जो है नेत्रों से निकल रही थी,
वो सोच रही थी अभी, क्योंकि इतनी उत्कंठा थी भगवान से मिलने की, भगवान से सबके सामने मिल नहीं सकती थी, भले ही मन में उन्होंने आलिंगन किया, दृष्टि से किया, अपने बच्चों को दिया, परंतु वो नहीं चाहती थी कि अपने नेत्रों से आंसू निकले, मगर फिर भी इतना रोकने के का प्रयत्न करने के बावजूद भी उनके आंसू निकल आए। और विलज्जती नाम भृगुवर, वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी, भृगुवर यानी हे शौनक मुनि, विलज्जती नाम, वो उनको इतनी लज्जा थी भगवान, वो लज्जा के कारण भगवान से मिल भी नहीं पा रही थी और रोकने का प्रयत्न करने के बावजूद भी अपने नेत्रों से आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तो ये सब ऐसे हो रहा था, वैकलवात यानी कि बिल्कुल एकदम अनजाना आचरण हो रहा था, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार से हम भगवान के अना साथ मिलें। तो इतना उनका भगवान के साथ मिलने का, इतनी उत्कंठा को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अनुवाद देखिए, रानियों की दुर्लभ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। यह साक्षात आलिंगन जैसा ही है, लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थीं, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यद्यपि स्त्री उचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में उनके अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन पर अपने अंतरतम अर्पित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके उसे पूरा कर लिया। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्यों उन्होंने नहीं किया डायरेक्ट से आलिंगन, तो यहाँ पर बताया लाइन नंबर 4 में, विलज्जते नाम, क्योंकि स्त्रियों की लज्जा जो है वो स्त्रियों का भूषण है, तो किसी भी परिस्थिति में लज्जा का परित्याग नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी उत्कंठा को पूरा किया अपने पुत्रों के द्वारा भगवान से आलिंगन करवा के, तो इसे पूरा कर ही लिया, लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत ही प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू धुलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा ही है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। माधुर्य रस में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावपूर्ण होता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार का भाव विनिमय युक्ति युक्त है। वास्तव में भक्तों, ये सब भाव जगत की और दिव्य जगत की बातें हैं, ये कोई साधारण संबंध नहीं है। जीव से भगवान का संबंध है और भगवान गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से समस्त विधियों का पालन करते हैं वो भगवान अपने जीवन में सिखा रहे हैं। तो आगे मानो सौनक मुनि पूछ रहे हैं कि जब कृष्ण उनके ही हैं, एक साथ ही रहेंगे और एकांत में तो उन्हें रहना ही है, उनके साथ ही रहेंगे, तो इतनी क्या उत्कंठा विकसित कर रही हैं? ये इतना ज्यादा उत्सुक क्यों हो रही हैं? क्यों रो रही हैं? तो फिर इसका उत्तर सूत गोस्वामी देंगे श्लोक नंबर 33 में। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।